ओम शांति। आज का जो सब्जेक्ट है निमित्त निर्माण और निर्मल वाणी, बहुत ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, क्योंकि जब से हम बाबा के बच्चे बने हैं, बाबा ने हर एक के अंदर कोई न कोई विशेषता जरूर वरदान रूप में दी है। और ये विशेषता का वरदान हमें क्यों मिला है? क्योंकि बाबा हमें किसी न किसी रूप से इस विशेषता के प्रयोग के लिए निमित्त बनाना चाहते हैं, इसीलिए ये वरदान हमें प्राप्त है। और समय प्रति समय हमारे सामने अनेक ऐसे ओकेजन भी आते हैं, अवसर भी आते हैं कि जब बाबा चांस देता है। कोई व्यक्ति की बात नहीं करती हूँ, बाबा चांस देता है। और जब उस विशेषता को बहुत निर्माणता के साथ हमने प्रयोग किया, तो प्रयोग करने से जो प्राप्ति का अनुभव है वो भी बहुत अधिक महसूस होता है। विशेष रूप से क्या प्राप्ति होती है? प्राप्ति में तो हम लिस्ट बाद में देखेंगे ही कि क्या क्या प्राप्ति का अनुभव होता है, लेकिन इमीडिएट में मैं कहूं कि जो विशेषता भगवान ने वरदान रूप में हमें दी है, तो ईश्वर की दुआएं सबसे बड़ी प्राप्ति है। कि परमात्मा दुआओं के अधिकारी हम बन जाते हैं और उससे जीवन इतना आसान और सरल हो जाता है। जो इस जीवन के अंदर, ब्राह्मण जीवन के अंदर कई प्रकार के संघर्षों से हम स्वतः मुक्त हो जाते हैं, लेकिन इस विषय को मैं और डेप्थ में खोलना चाहती हूँ कि सबसे बड़ी बात निमित्त बनने का मतलब क्या होता है। क्योंकि निमित्त बने हैं उसका प्रमाण निर्माण है और उसका प्रैक्टिकल स्वरूप निर्मल वाणी है। तो ये तीनों का आपस में बहुत गहरा संबंध है। मैं आरंभ करती हूँ कि बड़ी दादी जी के एग्जाम्पल से, क्योंकि बड़ी दादी जी को हमने बहुत करीब से देखा, तो दादी हमेशा अपने आप को निमित्त समझती थी। इतना बड़ा बेहद का बाबा का यज्ञ चलाना आसान बात नहीं होती है, कई प्रकार की बातें आती है, लेकिन उसके बावजूद भी हर वक्त दादी जी की स्थिति ऊंची रहती थी। और उसका कारण यही था कि दादी हमेशा यही बात कहती थी, बाबा ने निमित्त बनाया है। दादी जी को जब भी कभी कोई बात कहनी होती थी, किसी से भी, मधुबन निवासियों को भी जब कहती थी, या कभी मीटिंग होती थी और मीटिंग में भी बैठते थे और दादी जी को कोई बात सुनानी होती थी, मुझे याद नहीं है, दादी जी के साथ इतने साल मैंने गुजारे 92 से लेकर के मैं साथ साथ रही 2007 तक, लेकिन मैंने कभी भी दादी जी के मुख से मैं शब्द नहीं सुना कि मैं ये कहती हूँ, मैं ये कहना चाहती हूँ। दादी हमेशा जैसे बाबा ने उनको वो सीट दिया था उसके हिसाब से दादी हमेशा ये कहती थी, दादी का ये विचार है फिर भी जैसे आप लोग समझो। तो ये भाव हमेशा जो दादी जी के मुख से निकलते थे कि दादी का ये विचार है, माना मैं कह रही हूँ ये नहीं, लेकिन बाबा ने जिसको निमित्त बनाया है वो दादी का ये विचार है। तो दादी का ये विचार है तो जैसे दादी ने अपने आप को उस सीट से भी, उस पोस्ट से भी अपने आप को अलग समझती थी, और इसीलिए दादी कहती दादी का ये विचार है फिर भी जैसे आप लोग ठीक समझो। मैं अपना एक ही उदाहरण देती हूँ कि जब मैं मधुबन में आई तो मधुबन में रहने के लक्ष्य से मैं नहीं आई थी, मैं यहाँ आई थी एक शिविर का ग्रुप लेकर के बॉम्बे से, हैदराबाद से। तो जब मैं यहाँ आई तो उसी समय डॉक्टर चन्ना रेड्डी जो यहाँ का गवर्नर था राजस्थान का उस वक्त, उन्होंने ये व्यक्त किया कि मुझे कोर्स करना है, और जब कोर्स करना है तो नेचुरल है कि कोई कोर्स कराने वाला राजभवन जाना चाहिए। तो क्योंकि उस समय मई जून ऐसे मास होते थे जब गवर्नर ऑफिस यहाँ शिफ्ट हो जाती थी जयपुर से, तो वो दो महीना यहाँ रहने वाला था। तो क्योंकि शिविर चल रही थी तो शिलूबेन शिविर में बिजी थी, वो समय शशिबेन भी शिविर कराती थी और एकोमोडेशन सारा पांडव भवन का देखती थी, पांडव भवन में ही शिविर चलती थी। उस समय ज्ञान सरोवर था नहीं, शांतिवन था नहीं, तो इसीलिए दोनों बिजी थे। तो जब उनको ये मैसेज मिला कि मैं गवर्नर साहब कोर्स करना चाहते हैं, तो दादी ने सोचा किसको बुलाएं किसको बुलाएं, कई नाम निकाले कि भाई जयपुर से ही किसी को बुलाया जाए, अहमदाबाद से किसी को बुलाया जाए। उतने में मैं पार्टी लेकर के यहाँ पहुंची, तो जैसे ही मैं पहुंची तो दादी आंगन में बैठी थी, तो दादी ने कहा चलो टेंशन खत्म हो गया, बाबा ने भेज दिया। तो दादी ने उस समय कहा कि देखो तुम्हारा वापसी का कब है जाने का। मैंने कहा बस 5 दिन के लिए ये शिविर पूरी होंगे हम निकल जाएंगे। तो दादी ने कहा टिकट कैंसिल करा दो, तुम यहाँ गवर्नर को कोर्स करना है, और मैं समझती हूँ कि तुम उसको हैदराबाद में मिली तो होगी। मैंने कहा मिली हूँ एक बार। तो कहा तुम टिकट कैंसिल करा दो और तुम कोर्स कराओ, और कोर्स के बाद तुमको भेज देंगे। मैंने कहा ठीक है। जैसी दादी की आज्ञा थी हम टिकट कैंसिल करा करके यहाँ कोर्स कराने के लिए रहे। कोर्स कराने के समय जैसे दादी को इतना इंटरेस्ट रहता था हर बात का, देखो निमित्त जब होते हैं तो उसको हर प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास। तो दादी जब मुझे राजभवन भेजती थी तो जब तक मैं वापस न आऊं राजभवन से तब तक दादी खाना नहीं खाती थी। निमित्त का जो एहसास, मैं एक एक गुण दादी के जीवन से और निमित्त क्या होता है उस बात को मैं समझाना चाहती हूँ और स्पष्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकल अपने जीवन में ये चीजें सीखी है दादी से। तो जब तक मैं आती नहीं थी तब तक दादी खाना नहीं खाती थी। आने के बाद सीधा दादी कहती थी चलो तुम मेरे साथ चलो और भोजन के टेबल पर साथ ही बैठो और सुनाओ मुझे क्या हुआ। तो दादी को मैं बता देती थी कि दादी ऐसा तो कोई प्रश्न आदि तो नहीं हुआ और अभी तो सारा सुन रहा है ठीक है, लेकिन फिर भी दादी जैसे इंतजार करती थी कुछ और पूछा आज पूछा कुछ कहा। 7वें दिन जब मैं गई, कोर्स पूरा हुआ उनका 7 दिन का, 8वें दिन जब मैं गई तो उसने कहा आज मुझे सुनना नहीं है, गवर्नर ने ये कहा आज मुझे सुनना नहीं है मुझे प्रश्न पूछना है। और उसने इतने दिन के प्रश्न इकट्ठे करके रखे और 2 घंटा क्या 2.5 घंटा शायद प्रश्न उत्तर चले, 2.5 घंटे तक उसने इतनी डेप्थ में प्रश्न पूछे कि कई चीजें तो मुझे भी मालूम नहीं होती थी कि उसका जवाब क्या देना होता है। लेकिन जब मैंने जो चीज मुझे मालूम नहीं होती थी तो मैं सीधा कह देती थी कि मेरे को ये चीज तो मालूम नहीं है क्योंकि मैं तो बॉम्बे से आई हूँ, यज्ञ के कारोबार की कई चीजें ऐसी होती, अगर आप कहेंगे तो मैं कल दादी से पूछ करके आऊंगी और आपको बताऊंगी। तो उसको उस बात में एक विश्वास हो गया कि ये झूठ नहीं बोल रही है, नहीं पता है तो नहीं पता है कल बताऊंगी करके वो कह देती है। ये नहीं कि कोई टालम टोल कर दिया, ये मना उस वो मेरी पर्सनालिटी को एनालाइज भी कर रहा था, ये मुझे महसूस नहीं था, लेकिन शायद बाबा ने इसीलिए मुझे भेजा था और इसीलिए शायद मैं वहां गई कोर्स कराने के लिए। उस दिन दादी इंतजार करते 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 जब 7 बजे मैं जाती थी, 9 बजे तक जब नहीं आई तो दादी को बड़ी चिंता हो गई। बार बार किसी को भेजती थी, जाओ क्या हो रहा है, अभी तक क्यों नहीं आई, क्यों नहीं आई। निमित्त जिम्मेवारी का एहसास और उसको लेकर के ख्याल चलाना, ये नहीं कि ठीक है होगा, ये नहीं भाव, छोड़ देना नहीं। जब वहां जो भी आता था तो एडीसी कहता था डिस्कशन चल रहा है, अंदर कोई नहीं जा सकते हैं, आप बाहर बैठो, और बाहर से ही वापस भेज देता था। तो दादी को और ख्याल चलता था कि क्यों नहीं जाने दिया अंदर में, ऐसी क्या डिस्कशन हो रही है। तो उस दिन दादी ने खाना तो खाया ही नहीं, वैसे भी रोज नहीं खाती थी, लेकिन 9 बजे तक इंतजार करती रही, और जैसे ही मैं आई कहा चलो आज इतना देर हो गई, ऐसी क्या डिस्कशन हुई। और वो जानने के हिसाब से एक एक प्रश्न जो वो पूछा, तो मैंने बताया ये प्रश्न पूछा। तो दादी कहती अच्छा इसका उत्तर क्या दिया। तो मैंने कहा दादी मैंने कह दिया मुझे पता नहीं, यज्ञ के कारोबार की बात है, मैं यज्ञ में नहीं रहती हूँ, मैं सेंटर पर रहती हूँ, और इसीलिए यज्ञ का ये प्रश्न है तो मैं पूछ करके कल बताऊंगी। दादी कहती थी बड़ा अच्छा जवाब दिया तूने, बड़ा अच्छा जवाब, माना वो जिज्ञासा के क्या हुआ उसके बाद, उसका फॉलो अप लेना, और फॉलो अप लेते हुए एक एक बात को बड़ी गहराई से महीनता से जान करके पूछना। और फिर दादी जी कहती थी कि बहुत अच्छा किया। उसके बाद जो है जब गवर्नर का 2 महीना यहाँ रहने के बजाय 1.5 महीने में उनको जयपुर जाना पड़ा, तो उन्होंने दादी जी से कहा कि मैं जयपुर जा रहा हूँ, लेकिन मैं वहाँ पर एक सेंटर खोलना चाहता हूँ मिनिस्टर एरिया में, और मुझे यही बहन चाहिए वहाँ पर, क्योंकि सबको सुनाने के लिए। तो जब ये कहा तो दादी ने कहा ये तो बॉम्बे में रहती है, हैदराबाद का सेंटर संभालती है, फिर भी मैं आपको जवाब दूंगी और उसको पूछूंगी उसका क्या प्रोग्राम है। उसके बाद दादी ने मेरे को कहा कि देखो वो गवर्नर मांग कर रहा है, और इसीलिए जो है सेवा बाबा बहुत अच्छी शायद कराएगा, तो तुम अभी जो है बॉम्बे को छोड़ करके जयपुर के लिए आ जाओ। तो मैंने कहा ये तो फिर आप वहां बात करेंगे बहन जी के साथ, और जैसे बहन जी कहे। तो कहा दादी ने कहा मैं बात कर लूंगी। उसके बाद जब गवर्नर की ट्रांसफर हो गई, मैं सारी डिटेल नहीं बता रही हूँ, गवर्नर की ट्रांसफर हो गई, क्योंकि जब यहाँ ब्रह्मा कुमारियों का इतना ज्ञान सरोवर उसने खड़ा कर दिया, बहुत सेवा में आगे रुचि लेने लगा, बहुत कारोबार में आगे आने लगा यहाँ के हर प्रोग्राम में, तो नेचुरल है सबकी आंखों में आ गया। तो उसकी ट्रांसफर कर दी तमिलनाडु में। तो जब ट्रांसफर हो गई तो वहां का जो सेंटर खोलना था जयपुर में वो भी बंद हो गया, वापस गवर्नमेंट ने अपना क्वार्टर ले लिया जो उन्होंने अलॉट किया था हम लोगों को। तो नेचुरल अभी वो सेंटर तो खुला नहीं वहां पर। उसके बाद दादी ने मेरे को कहा कि देखो ज्ञान सरोवर बन रहा है, और अभी सेवा यहाँ बढ़ेगी विंग्स के हिसाब से। दादी की इच्छा है, देखो दादी के शब्द देखना, दादी की इच्छा है, दादी की ये भावना है कि आप यहाँ ही रहो, क्योंकि वहां से छुट्टी तो ले ही लिया है, तो अब यहाँ ही रहो, लेकिन फिर भी दादी आपका संकल्प जानना चाहती है कि आप यज्ञ में रहना चाहेगी या सेंटर पर जाना चाहेगी। कितनी निर्माणता उसके बाद, आज दादी अथॉरिटी थी, ऑर्डर कर सकती थी मुझे कि अब आपको कहीं नहीं जाना है, यहीं रहना है। ऑर्डर कर सकते। निमित भाव जिसको कहा जाए, निमित के साथ निर्माणता, के दादी की इच्छा ये है, लेकिन फिर भी दादी जानना चाहती है कि आपकी भावना क्या है, यज्ञ में रहना या सेंटर चाहिए, तो दादी आपको अलग से सेंटर भी दे सकती है और भेज सकती है, जहाँ जाना चाहो वहाँ पर। मेरे को उस समय ये महसूस हुआ कि दादी इतनी बड़ी अथॉरिटी है, आज दादी को मुझे पूछने की आवश्यकता नहीं थी, मैं इतनी छोटी थी, लेकिन फिर भी निमित्त के साथ निर्माणता, हेड होते हुए, ऑर्गेनाइजेशन की हेड होते हुए भी कोई कंपल्शन नहीं, और कंपल्शन न करते हुए अपने विचार भी बताया, लेकिन साथ में बालक बनकर के अभी तुम भी बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। तो उस समय ये आया मन के अंदर के इतनी ग्रेट पर्सनालिटी के साथ अगर बाबा मुझे अवसर दे रहा है रहने का, तो मैं ये चांस क्यों गवाऊं। और वो इसीलिए क्योंकि बाबा ने जो विशेषता भरी थी उस समय मुझे पता नहीं था, लेकिन किस तरह बाबा को आगे उसका कार्य में लगाना था वो बाबा जानता था। और इसीलिए उस समय जब निमित्त बनकर के हाजी का पाठ पक्का करते हैं, तो हाजी करने से जैसे अवसर के द्वार अपने आप खुलने लगते हैं और व्यक्ति आगे से आगे आगे से आगे बढ़ना शुरू करता है, ये महसूस था। इसीलिए कहा कि निमित्त बनना माना क्या, तो निमित्त बनने का मतलब है कि अपने आप को जिम्मेवार भी समझना, लेकिन जिम्मेवारी के साथ साथ नम्रता, निर्माणता जितनी अंदर में होती है तो निर्मल वाणी भी स्वतः रहती है और सामने वाले को कोई भी प्रकार के हम ठेस नहीं पहुंचा सकते, या कोई अपनी अथॉरिटी यूज करने का फील करने नहीं देते हैं, या जहां कहे अहंकार नहीं आता है, देह अभिमान। तो निमित्त बनना माना जो बाबा ने त्याग की मुरलियां चलाई है उसमें जो कहा सबसे पहला मैंपन का त्याग, तो ये मैंपन का त्याग ही हमें निमित्त बनने का सौभाग्य प्राप्त कराता है। जहां मैंपन आया, मुझे 1969 की बाबा की एक मुरली याद आती है, फरवरी मास की शायद मुरली है, और फरवरी मास में बाबा ने बहुत अच्छी बात कही कि अभी सेवा का आगे का स्वरूप क्या होगा। जब साकार बाबा ने शरीर छोड़ा उसके बाद बाबा सेवा का आगे का स्वरूप बता रहे थे, उस समय बाबा ने बहुत अच्छी बात कही कि अब आप बच्चों के सामने सेवा बहुत होगी, लेकिन सेवा में एक विघ्न जरूर आएगा। ये भी बाबा ने पहले से कॉशस कर दिया था, अलर्ट कर दिया था हर एक यज्ञ निवासियों को कि एक विघ्न जरूर आएगा, और विघ्न क्या आएगा, तो विघ्न आएगा मैंपन। मैंने ये सेवा की, मैं मुझे ये जिम्मेवारी दी गई है, मुझे ये करना है, मुझे ही कहना चाहिए, ये बाबा के शब्द जो थे उस वाणी के अंदर। और इसीलिए बाबा ने कहा कि सेवा बहुत होंगी लेकिन ये सबसे बड़ा विघ्न होगा यज्ञ के अंदर, और ये विघ्न को मिटाने का एक ही तरीका, वो सॉल्यूशन भी बाबा ने बताया है उस मुरली के अंदर, कि वो विघ्न को मिटाने का एक ही तरीका होगा कि जब अपने आप को निमित्त समझ लो। जिस समय हम अपने आप को निमित्त समझ लेते हैं तो उस विघ्न को सहजता से मिटा सकते हैं। तो बाबा ने विघ्न भी बताया, स्वरूप भी बताया सेवा का, विघ्न आने वाला उसके लिए भी सावधान किया, और साथ में उस विघ्न को मिटाने की युक्ति भी बाबा ने बताई कि उस वक्त अगर अपने आप को निमित्त समझ लेंगे कि बाबा ने निमित्त बनाया है, तो निमित्त माना निर्माण, निमित्त माना झुक जाना, निमित्त माना सरेंडर, जब ये भाव अंदर में आ जाता है तो कोई भी प्रकार का वो मैंपन वाला जो भाव है वो सहज समाप्त हो जाता है। उसके बाद बाबा ने एक बहुत अच्छी बात बताई कि निमित्त बनना माना अपने आप को अवतरित आत्मा समझना, कि मैं अवतरित हुई हूँ इस विशेष कार्य के लिए, और ये विशेष कार्य हो जाने के बाद फिर अपने आप को संकीर्ण लेना, तो जैसे कछुए की तरह विस्तार में भी आना और समेट लेना, ये निमित्त की विशेषता है, ये निमित्त का विशेष लक्षण है। करने समय इंद्रियों को विस्तार में भी ला करके किया और कर्म पूरा हो जाने के बाद अपने आप को सहजता से संकीर्ण लेना और फुल स्टॉप, उसके बाद कोई भी अंदर व्यर्थ चलाना नहीं, क्यों क्या वाला क्वेश्चन मार्क वहां आ नहीं सकता क्योंकि मैं निमित्त हूं। दूसरी बात बाबा ने और भी कई बार हम बच्चों को ये स्पष्ट किया है कि निमित्त बनना माना ट्रस्टीशिप की भावना, ट्रस्टीशिप की भावना, कि एक ट्रस्टी किस तरह से हर कारोबार को देखता है, संभालता है, जिम्मेवारी के साथ संभालता है, लेकिन साथ ही साथ उसमें ऑनेस्टी और साथ ही साथ उसमें मना डिटैचमेंट, अब मेरा है ये नहीं, तो एक्यूरेसी से कार्य भी करता है, जिम्मेवारी से करता है और साथ ही साथ डिटैचमेंट भी उसमें आ जाता है कि मेरेपन या आसक्ति का भाव उसमें नहीं, ये मेरा है ये नहीं, बाबा का है, और इसीलिए बाबा का है तो बाबा का हर कार्य हर चीज मुझे इतना ही अच्छी तरह से उसकी देखभाल करते हुए जिम्मेवारी से उसको संभालना है, एक्यूरेट रहना है उसके अंदर, और उसमें कहीं भी कोई भी प्रकार की वेस्टेज न हो या कोई धन का वेस्टेज न हो, तो इतना एक्यूरेट होकर के ईमानदार होकर के उसको संभालना, तो इसको कहा जाता है ट्रस्टीशिप की भावना। तो निमित्त बनना माना ट्रस्टी हो जाना, क्योंकि जहाँ ट्रस्टी होंगे वहां साक्षी भाव को ले आना सहज होगा। अगर ट्रस्टीशिप नहीं है, उस लगाव में आकर के कर्म करना शुरू कर दिया, ये मेरी विशेषता इसलिए मुझे ही करना है, ये भाव से उसमें अटैच होकर के कर्म करना शुरू हुआ, और वहां कहीं पर भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, माया का पेपर तो आता ही है, और इसीलिए जब पेपर आया तो अपनी अवस्था पूरी हलचल में आ जाएगी, वो अवस्था हमारी रहेगी नहीं। वहां तक अवस्था हलचल में आ सकती है कि कभी कभी उसके कारण क्रोध बड़े स्वरूप में भी बाहर निकल आता है, क्योंकि कहीं न कहीं अटैचमेंट के कारण वो मैंपन जो था, अभिमान का स्वरूप जो था, उसको ठेस पहुंची, तो वहां क्रोध आना ये स्वाभाविक है। तो इसीलिए ये क्रोध आया तो निर्मल वाणी समाप्त तो हो गई, और ये प्रत्यक्ष है कि क्रोध आया माना अहंकार को ठेस लगी, इसीलिए क्रोध आया, तो इसीलिए वो ट्रस्टीशिप की फीलिंग ही नहीं है। और जब ट्रस्टीशिप की फीलिंग नहीं है तो माना मैं निमित्त होकर के कार्य कर रही हूं, ये कहा ही नहीं जाएगा। तो निमित्त बनना माना, इसीलिए बड़ी दादी जी को हम देखते थे कि बड़ी दादी जी को जब कोई कहता भी था या कोई अपनी बात रखती भी थी, उसके बाद डिटैच हो जाना। जिसको बाबा कई बार कहते हैं मालिक बन करके करना, लेकिन उसके बाद बालक बन जाना, उसका बैलेंस, तो निमित्त वाले के अंदर ये बैलेंस बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि बालक बनना माना निर्माण, मालिक बनना माना जिम्मेवार, तो जिम्मेवारी के साथ साथ निर्माण का जिम्मेवारी होकर के अपनी राय भी देना, लेकिन फिर बालक बन करके उसको जो है जैसा है एक्सेप्ट कर लेना तो निर्माण था, तो वहाँ क्रोध या आवेश आ नहीं सकता है क्योंकि हम डिटैच हो गए हैं, उस बैलेंस के साथ हम यज्ञ के अंदर चल रहे हैं। तो ये है निमित्त बनने का भाव। साथ ही साथ जो निमित्त बनता है, तो बाबा ने एक मुरली में ये भी बात बहुत अच्छी कही कि निमित्त बनने का भाग्य बहुत बड़ा है। यज्ञ के अंदर कई प्रकार की सेवाएं हो रही है और होती रहती है, और उन सेवाओं में नवीनता ले आना, उन कारोबार के अंदर नवीनता को इंट्रोड्यूस करना, उसके लिए बाबा ने हरेक को जो विशेषता दी हुई है उसके हिसाब से वो अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए उस नवीनता को इंट्रोड्यूस करते हैं। और इंट्रोड्यूस करने के बाद जैसे कहा कि मालिक बनकर के दिया भी, लेकिन फिर डिटैच हो जाना, तब वो निमित्त बनने का भाग्य उसको प्राप्त होता है कि परमात्मा दुआएं स्वतः उसके ऊपर बरसने लगती है और ये महसूसता होगी। मुझे याद आता है कि मैं जब ये गीता का अध्ययन कर रही थी, मुझे कोई संकल्प नहीं था गीता करने का, और न मेरे ख्याल ख्वाब में भी ये बात थी कि मैं गीता को कोई स्टडी करूं, ये भी नहीं था। लेकिन बाबा को कराना था तो निमित्त बनना माना बाबा करण करावनहार है, वो कराता है। और कैसे कराता है उसका मैं अगर एग्जाम्पल आपको देती हूँ, क्योंकि जब मैं इसको करती जा रही थी तो जो उसका सुख प्राप्त हुआ मुझे, स्वयं को महसूस हो रहा था कि बाबा का वरदान जैसे हर वक्त मिल रहा है। मेरे को कोई संकल्प नहीं था, लेकिन ये संकल्प कहाँ से आया, तो बाबा कैसे निमित्त के द्वारा ही संकल्प देता है। तो पांडव भवन में हम थे, हम तो शिविर करा रहे थे, तो हमने यही एक्सेप्ट कर लिया कि मैनेजमेंट कराना और शिविर कराना, यही हमारी ड्यूटी है। मधुबन में रहते सेवा में ये जो विंग्स के कार्यक्रम चलते हैं उसमें भी मैनेजमेंट कराना है और बाकी शिविर कराना है, तो ये सेवा को हमने स्वीकार कर लिया था। लेकिन बाबा को कुछ और कराना था, तो निमित्त के द्वारा कैसे बात आती है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि निमित्त कौन था। गीता के भगवान के लिए निमित्त तो जगदीश भाई जी थे। तो जगदीश भाई जी उस समय अपने अंतिम दिनों में मधुबन में थे, तो मधुबन में जब थे तो मधुबन वालों को क्लास करा रहे थे, लास्ट क्लास थी मधुबन वालों की। और मधुबन वालों की जब क्लास थी तो उस समय जगदीश भाई कह रहे थे कि बाबा ने बहुत सेवा मुझसे करवाई और मुझे खुशी है कि बाबा ने मुझे अच्छी तरह से यूज किया और इतनी सेवा, विभिन्न प्रकार की सेवा बाबा ने मुझसे करवाई। लेकिन उन्होंने कहा, और लेकिन कहते हुए उनका दिल भर आया था उस वक्त कि लेकिन आज जब जाने का वक्त आ रहा है तो एक बात का अफसोस मुझे जरूर रह जाएगा या रह रहा है अंदर में, कि बाबा की आश थी गीता के भगवान को सिद्ध करने की, लेकिन वो चीज मैं नहीं कर पाया और उसके पहले मुझे जाना पड़ रहा है, तो ये अंदर में रह रहा है कि वो चीज मैं नहीं कर पाया। भले बाबा ने लिखवाया, सब कुछ करवाया, लेकिन भाई जी के, लेकिन उनका दिल इतना भर आया तो उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन उस समय जो उनके हृदय से वो बात निकल रही थी, तो उनकी एक एक बात जैसे तीर की तरह मुझे लग रही थी, जबकि पूरा मधुबन वालों का क्लास बैठा था। लेकिन वो चीज निमित्त के द्वारा कैसे आकर के मेरे हृदय को स्पर्श करके मुझे उसके बाद जो संकल्प चले कि इसका मतलब मैं इतना मैनेजमेंट करा रही हूँ, लेकिन बाबा की आश तो मैनेजमेंट तो नहीं है। और बाबा की आश अगर गीता के भगवान की ही है, तो इसका मतलब जैसे आज भाई जी जा रहे हैं और उस समय उनको ये बात फील हो रही है, कल को अगर मुझे भी जाना पड़े तो उस समय मुझे भी ये फील होगा कि मैंने बाबा की आश पूरी नहीं किया। और वो तीर जिसे एक एक शब्द अंदर घुस रहे थे, लेकिन फिर अपनी असमर्थी महसूस हो रही थी। बाबा ने संकल्प दिया भाई जी के द्वारा, जगदीश भाई साहब के द्वारा ही संकल्प तो दिया, लेकिन फिर मैंने उस संकल्प को छोड़ दिया कि मेरी असमर्थी है, मुझे संस्कृत तो आता नहीं है और मैं कैसे कर सकती हूँ, छोड़ो मेरा काम नहीं है करके संकल्प देने के बाद भी मैंने छोड़ दिया। लेकिन बाबा को करवाना ही था। तो फिर 6 महीने के बाद एक भाई आता है मधुबन में शिविर में, और शिविर में आने के बाद जो है शिविर के समय ही उसने शिविर के बाद मुझे मिला और मुझे कहा कि बहन जी हम है ना आपको अपने वहां प्रोग्राम करने के लिए बुलाना चाहते हैं। मैंने कहा ठीक है भले आएंगे। तो कहा कि नहीं ऐसा है कि मेरे गुरु की बरसी है और उस बरसी के निमित्त मैं आपको बुलाना चाहता हूँ, क्योंकि उस समय लगभग 25,000 से 35,000 लोग इकट्ठे होंगे और मैं चाहता हूँ कि उस समय आप वहाँ आओ और सबको संबोधित करो, ये ज्ञान सुनाओ। मैंने कहा अच्छी बात है ना। फिर उसने उसको मैं अचानक मैंने पूछ लिया कि कोई टॉपिक होगा जिस पर बोलना होगा, किस पर बोलना होगा। तो कहा वैसे मेरा गुरु जो थे वो गीता पर बोलते थे। देखो दूसरी बार बाबा, जब वो संकल्प भाई जी के द्वारा आया छोड़ दिया मैंने, लेकिन बाबा को निमित्त बनाना था। तो दोबारा संकल्प आता है उस भाई के द्वारा कि मेरा गुरु जो था गीता पर ही बोलते थे और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप अगर गीता को लेकर के शुरू करेंगे तो सभी को बहुत खुशी होगी। तो मैंने कहा भाई जी मैंने गीता कभी पढ़ी नहीं है और मुझे गीता मालूम नहीं है और न मुझे आती है। तो फिर वो भाई 2 मिनट तक साइलेंस रहा, फिर कहा, मैंने कहा कि अगर आप कहो आत्मा परमात्मा सुना देना है तो वो मैं सुना सकती हूँ। कहा ठीक है कोई बात नहीं आप वही सुना दीजिए लेकिन आपको आना है। मैंने कहा ठीक है। तो मैं खुश हो गई कि चलो अभी गीता पर तो बोलना नहीं। तो दोबारा भी संकल्प टाल दिया मैंने। पहली बार बाबा ने भाई साहब के द्वारा दिलाया, दूसरी बार ये भाई आकर के कहता है आप गीता पर बोलो। तो दोबारा भी मैंने छोड़ दिया उस संकल्प को कि मुझे गीता आती नहीं है न मैं पढ़ी है। लेकिन करीबन 6 महीना बीत गया, 1 साल पहले उसने मुझे प्रोग्राम दिया, 6 महीना बीतने के बाद एक दिन बैठी थी तो संकल्प आया कि अगर उसका गुरु गीता पर बोलता था और मैं गीता के ऊपर कुछ नहीं बोलूं तो भी अच्छा नहीं, तो कुछ तो बोलना चाहिए मुझे। लेकिन फिर मेरी असमर्थ ही महसूस हुई कि नहीं मैं तो नहीं बोल सकती हूँ। फिर तीसरी बार 2 बहनें मेरे पास आई, 2 बहनें आई मेरे पास, बहन जी कोई सेवा हो तो बताओ। तो मैंने उनको पूछा आपने गीता पढ़ी है? कहा नहीं। मैंने कहा पढ़ो गीता पढ़ो और मेरे को सुनाओ कि गीता में क्या लिखा है। कहा ठीक है। फिर वो सच मान गई और वो लोग गीता पढ़ने लगे और बहुत अच्छा लगा। तो 3 महीने के बाद मुझे फोन किया, बहन जी गीता बहुत अच्छी है आप पढ़ो एक बार, इतना अच्छी गीता है। मैंने कहा आपने कुछ पॉइंट्स लिखा है? कहाँ लिखा है। मैंने कहा मुझे भेज दो मैं पढ़ती हूँ। उन्होंने जब मुझे भेजा तो पढ़ने के बाद मुझे इंटरेस्ट जागृत हुआ कि अच्छा इतनी अच्छी बातें लिखी है। फिर मैंने पढ़ना, माना 3 महीना रह गए थे, मैंने पढ़ना चालू किया। इतना अच्छा महसूस होने लगा कि ये मैंने पहले क्यों नहीं पढ़ा, इतना अच्छी बातें हैं इसके अंदर, मैंने पहले क्यों नहीं पढ़ा। और उसके बाद जब मैंने शुरू किया उसके ऊपर करना और ये पहला प्रोग्राम इतना सफलतापूर्ण मुझे बाबा ने अनुभव कराया कि तुम्हें इसी के ऊपर करना है। तो वहां से ये आरंभ हुआ। तो निमित्त बनने का भाग्य जो मुझे मिला कि उस समय जो मुझे सुकून मिला उससे, और ऐसा महसूस हुआ कि बाबा का वरदानी हाथ मेरे ऊपर है और बाबा करण करावनहार करा रहा है और मैं करणहार बन करके करती जा रही हूँ। जहां जहां कभी मुझे महसूस होता था मेरी असमर्थी है, मुझे नहीं आता है, नहीं समझ में आ रहा है, उसका रहस्य क्या बताना चाहिए, क्या करना चाहिए, आप मानेंगे नहीं, मुझे कभी कभी मैं पढ़ पढ़ करके सो जाती थी तो स्वप्न में बाबा उसको क्लियर करता था। कई चीजें अमृत वेले जब योग में बैठती थी तो योग में जैसे बाबा उसका भाव क्लियर करता था। और इतने सुंदर अनुभव हुए कि कैसे बाबा निमित्त बनाकर कराता है और विशेषता भरता है, नहीं है तो भरता है, असमर्थी है तो समर्थ बनाता है, अयोग्यता है तो योग्यता भरता है। तो ऐसे जब मैंने अनुभव किया कि निमित्त बनकर के बाबा ने किस तरह से, बस मैं निमित्त बनकर के हाजी करते हुए उस बात को स्वीकार, दो बार मैंने उसको रिजेक्ट किया, तीसरी बार जब एक्सेप्ट किया तो जैसे बाबा की संपूर्ण पावर्स को अनुभव करना, तो निमित्त बनने का जो भाग्य है ऐसा महसूस होता है कि खाली बाबा के आशीर्वाद या दुआएं नहीं लेकिन बाबा की पावर्स भी प्राप्त होने लगती है। लेकिन निर्माणता बहुत जरूरी है क्योंकि निमित्त बनने के साथ ये विघन, मैंपन का विघन नहीं आ जाना चाहिए। ये बाबा ने जो उस मुरली के अंदर, मैं समझती हूँ फरवरी की मुरली है बाबा की 69 की, कि जिसमें बाबा ने कहा कि आने वाले समय में जब सेवा होगी तो विघन यही जरूर आएगा और ये विघन हमें कमजोर करेगा। तो ये पढ़ने के बाद वो इतना फिट बैठ गया था कि मैंपन कहीं भी आना नहीं चाहिए, मैं कर रही हूँ ये भाव नहीं आना चाहिए, ये भाव से अपने आप को अलग रखना ही है क्योंकि कराने वाला बाबा करा रहा है, महसूस हो रहा था बाबा करा रहा है, ये मेरी समर्थी और मेरी योग्यता से परे की बात थी, तब बाबा ने कराया। तो जब बाबा करा रहा है तो मैंपन कहाँ से आ सकता है। तो जब बाबा को हर बात में आगे ले आते हैं, जब कोई कहता भी है कि बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा आपने कहा, तो उस समय मुझे यही आता है कि नहीं, मैंने नहीं किया, बाबा ने कराया। और बाबा को वो सारी बात को जैसे मैं सौंप देती हूँ, अर्पित कर देती हूँ, समर्पण कर देती हूँ, तो जब समर्पण भाव बाबा के आगे आ जाता है कि ये महिमा जो है बाबा आपकी है, ये बातें जो लोग कर रहे हैं वो भी आपके कारण है, ऐसे करके जब समर्पित कर देती हूँ तो मैं देखती हूँ कि मैं हल्की हो जाती हूँ। और कहीं पर भी कोई भी प्रकार की, आज तक नहीं तो गीता ऐसा सेंसिटिव विषय होने के बावजूद भी, कहीं से भी कोई क्लैश हो, कोई लोगों ने अपोज किया हो, कोई लोगों ने तूफान मचाया हो, आज तक ऐसा अनुभव नहीं, क्योंकि बाबा जैसे सामने खड़ा हो जाता है और बाबा जैसे कवच बन करके खड़ा हो जाता, हम खाली निमित्त बन करके करते जाते हैं तो हमारे ऊपर जैसे कुछ नहीं आता। समय पर बाबा वही शब्द निकलवाता है कि जो हमने कभी चिंतन में भी नहीं लाया था, वही शब्द बाबा निकालता है। तो मैं साक्षी होकर के कभी कभी अपने आप में देखती हूँ कि बाबा निमित्त बन करके कैसे करवाता है। तो इसीलिए निमित्त बनने का जो भाग्य है वो बहुत बड़ा है, क्योंकि उसके बाद जैसे अपनी लाइफ को चेंज होते हुए हम महसूस करते हैं, जैसे एक पलट रही है जीवन, इस तरह से महसूसता जीवन में आती है। और निर्माणता के साथ जब उसको स्वीकार करते हैं तो जैसे बहुत स्मूथ हो जाती है। उसके लिए कभी कोई कंपटीशन कर नहीं सकता, जब आप निमित्त बन करके करेंगे तो कोई कंपटीशन कर नहीं सकता है, कोई नीचा दिखाने का प्रयत्न कर नहीं सकता है। जितने भी विघ्न मैंपन के कारण आते हैं, जितने भी टकराव संस्कारों के मैपन के कारण आते हैं, निमित्त बन जाने से वो सारे टकराव से हम अपने आप को फ्री कर देते हैं, क्योंकि निर्माण हो गए तो फ्री हो गए। दूसरी बात के निमित्त बनना माना हर वक्त ये अटेंशन में रहना कि जो कर्म मैं करूंगी मुझे देख सब करेंगे, मैं एग्जाम्पल हूं मेरे को देख करके सब करेंगे, तो जैसे खुद के ऊपर एक अटेंशन बहुत अच्छी तरह से आ जाएगा कि मेरे से ऐसा कोई कर्म नहीं होना चाहिए जिस कारण से किसी के मन के अंदर भी बाबा के प्रति या बाबा के ज्ञान के प्रति कोई संदेह पैदा हो। तो ये हर वक्त हमें सावधान रखता है। साथ ही साथ निमित्त बनना माना उदाहरण मूरत बनना, बहुत बड़ी बात है ये। उदाहरण मूरत बनना, और उदाहरण मूरत जो है उसका प्रत्यक्ष स्वरूप क्या है? उदार चित। उदार चित माना दूसरों को आगे करना, आप आगे आ जाओ, आप आगे बढ़ो, पहले आप, ये पहले आप का मंत्र, मैं ही करूं, मैं ही होना चाहिए, मैं ही करना चाहिए, ये नहीं। उदाहरण मूरत जो होता है, एग्जाम्पल जो होता है, वो दूसरों को आगे बढ़ाता है, और जो आगे बढ़ाता इतनी उदारता, बड़ी दादी के अंदर यही विशेषता हमने देखी कि हर एक यज्ञ निवासियों को आगे बढ़ाने का जो काम किया, क्योंकि वो अपने आप को उदाहरण मूरत समझती थी, और इसीलिए दूसरों को आगे बढ़ाने के लिए वो खुद जैसे निमित्त होकर के उनको आगे सहजता से बढ़ाती थी। हर एक, आज हर एक यज्ञ निवासियों से आप पूछेंगे, उनके अनुभव सुनेंगे दादी के साथ के, तो हर एक यही कहेगा दादी ने मुझे आगे बढ़ाया है, मेरे अंदर ये योग्यता नहीं थी, दादी ने ये भरी है योग्यता, मुझे नहीं आता था, मुझे सिखाया। मुझे याद आता है कि जब मैनेजमेंट की ट्रेनिंग यहाँ हो रही थी तो मैंने संकल्प ही छोड़ दिया कि मुझे कोई मैनेजमेंट करना है, तो बड़ी दादी ने मुझे बुला करके पूछा कि ये मैनेजमेंट ट्रेनिंग जो हो रही है तुमने नाम लिखवाया है इसमें? मैंने कहा नहीं दादी मैंने नहीं लिखवाया। क्यों नहीं लिखवाया? लिखवाओ नाम, नाम लिखवाओ। मैंने कहा दादी अभी तो रजिस्ट्रेशन भी बंद हो गया। तो कहा कोई बात नहीं। उसी समय शशिबेन को बुलाया, अब भी फोन लगाओ और कहो मधुबन के तरफ से उषा बहन बैठेगी और दादी ने कहा है। तो जब मेरे को कहा तो मैंने कहा चलो दादी की भावना है, ट्रेनिंग कर लो। तो ट्रेनिंग किया, ट्रेनिंग करने के बाद गोदरेज वाले यहाँ आए थे, ऐसे ही देखने के लिए, कैंपस देखने के लिए आए थे। तो उसका एक वाइस प्रेसिडेंट आया था, तो दादी से मिला जब, तो दादी जी ने उसको सहजता से कह दिया कि आप लोगों की मैनेजमेंट ट्रेनिंग चलती है। कहा हमारी मैनेजमेंट ट्रेनिंग चलती है। कहा आइए इधर आओ, मेरे को बुलाया, ये हमारी बहन है ना, इसने मैनेजमेंट ट्रेनिंग किया है और ये कराती है। तो उस भाई ने कहा कि बहुत अच्छी बात, फिर हमारे पास अगर गोदरेज में आए। दादी ने कहा जरूर जाए, जरूर जाए। तो जब नागार्जुना से आने के बाद गोदरेज में दादी ने भेजा, मैंने सोचा दादी मैं अभी तैयार नहीं हूँ। तो इसीलिए ये बात हम कहना चाहते हैं कि हर एक को आगे बढ़ाना, इतनी उदारता, क्योंकि जो आगे बढ़ाता है वो कभी पीछे रहता नहीं है। ये सीक्रेट जो समझ लेता है कि निमित्त बन करके जो पहले आप करके दूसरों को आगे बढ़ाता वो कभी पीछे नहीं रहता है, वो स्वतः आगे बढ़ने लगता है। बड़ी दादी जी की यही विशेषता थी, बड़ी दादी कभी पीछे नहीं रही, कोई चीज को उन्होंने होल्ड नहीं किया, हर चीज को जैसे फ्लो होने दिया, एक नेचुरल सिस्टम में फ्लो होने दिया। तो जितना नेचुरल सिस्टम में फ्लो होने लगे, हर एक को आगे बढ़ाते गए, तो हर एक के अंदर से जो आज तक भी दादी जी के लिए जो रिस्पेक्ट और रिगार्ड आता है वो बहुत अधिक है। उसके बाद एक बात और याद आती है मुझे कि आदरणीय दादी जानकी जी ने बहुत अच्छी बात सुनाई थी कि निमित्त बनने वालों के अंदर चार बातों की धारणा जरूर होगी। तो चार बातें कौन सी विशेष रूप में होगी? तो दादी जी ने कहा कि नियम, मर्यादा, नीति और सभ्यता, ये चार चीजों के प्रति उनका फुल अटेंशन होगा। नियम, मर्यादा, नीति और सभ्यता, निमित्त बनने वालों के ये चार मुख्य लक्षण होंगे। नियम बाबा ने हमें दिए हैं अमृत वेले से रात्रि तक, उस नियम पर वो खुद एक्यूरेट रहेगा। मर्यादाएं जो बाबा ने हमें सिखाई, मर्यादाएं फुल पालन होगी उसके जीवन के अंदर। नीति यानी जो ब्राह्मणों की रीत रस्म है उसके अनुकूल होकर के वो चलेगा। और सभ्यता के दूसरों का रिगार्ड रखना, चाहे छोटे हो बड़े हो, लेकिन किसी की बात को काटने के बजाय उसकी हर बात के प्रति सभ्यतापूर्ण रिगार्ड रखते हुए अगर उसको कुछ कहना भी है या कोई और करेक्शन देना भी है तो सभ्यतापूर्ण हो, चाहे छोटों के साथ बड़ों के साथ सभ्यता। तो ये चार उसके मेन लक्षण बताए, नियम, मर्यादा, नीति और सभ्यता। उसमें वो चारों में बहुत बैलेंस्ड रूप से आगे बढ़ता है तब वो निमित्त बन सकता है। अगर ये चारों उसके अंदर नहीं है तो वो किसी भी सेवा कार्य के लिए निमित्त नहीं बन सकता है, क्योंकि उसको दुआएं ही नहीं मिलेगी। जब ब्राह्मण परिवार की दुआएं नहीं है उसके साथ में तो बाबा भी दुआ कहां से देगा। तो ये चार चीज उसके जीवन के लक्षणों में आ जाती है और उसके हिसाब से जब वो निमित्त बन करके चलता है तो हर रीति से एक्यूरेट उसको फॉलो करता है, तो एक्यूरेसी और ईमानदारी उसके जीवन के अंदर स्वतः दिखाई देती है। तो ये दादी ने कहा कि ये चार उसके मेन लक्षण है। बहुत सुंदर दादी जी ने एक बार क्लास कराई थी मधुबन वालों की, तभी दादी ने ये चार बातें स्पष्ट किया था और उसी के ऊपर पूरा क्लास किया था कि निमित्त बनना माना क्या होता है और उसके ये चार लक्षण से किस तरह से वो खुद भी आगे बढ़ता है और दूसरों को भी साथ में लेकर के आगे चलता है और बढ़ता जाता है। और तभी बाप दादा का शो कर सकता है या बाबा का साक्षात्कार करने के निमित्त भी वो बन जाता है। अगर जीवन के अंदर ये चार चीजें हैं तो बाबा की प्रत्यक्षता करने के निमित्त बन जाता है। अगर ये चार चीजें जीवन के अंदर नहीं है तो खुद के संस्कारों को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बन जाता है और वो स्वतः आउट हो जाता है, सिस्टम से आउट हो जाता है। वो कभी, क्योंकि दुआएं लेकर के नहीं चला तो सिस्टम से स्वतः आउट, उसको कोई बाहर निकालता नहीं है लेकिन वो स्वतः मूड ऑफ होकर के या किसी भी तरह से वो खुद साइड हो जाता, किनारा कर लेता है। तो इसीलिए दादी कहे या तो वो बाबा के प्रत्यक्षता के निमित्त बन जाता या खुद के संस्कारों को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बन जाता। कुछ तो प्रत्यक्ष होगा, कुछ तो प्रत्यक्ष होगा, या खुद को करेगा या बाबा को करेगा। तो खुद को करेगा तो उसमें अपनी कमी कमजोरी का प्रत्यक्षता का प्रमाण दे देगा कि मैं कितना योग्य हूँ या नहीं हूँ, ये भी खुद को प्रत्यक्ष कर देगा। और नहीं है और फिर भी वो ईगो अपने अंदर है तो अपने आप साइड हो जाना स्वाभाविक हो जाएगा उसके लिए, वो आगे चल नहीं पाएगा संगठन में, क्योंकि बाबा का कार्य जो है संगठन में साथ में चलना होता है, संगठन में सबको लेकर के चलना होता है। वन मैन शो यहाँ नहीं है जैसे दुनिया में होता है। दुनिया के अनेक संस्थाओं में वन मैन शो चलता है लेकिन यहाँ भगवान ने संगठन की शक्ति को बढ़ाया है। और कभी कभी इसीलिए मैं बाबा की ये सिस्टम को जब देखती हूँ और सोचती हूँ उसके बारे में तो मुझे इतना अच्छा लगता है कि देखो बाबा ने दादी का पार्ट अपना, जानकी दादी का विदेश का पार्ट अपना, गुलजार दादी का अव्यक्त का पार्ट अपना, हर एक को कोई ना कोई ऐसी विशेषता का ब्लेसिंग दे करके उसको निमित्त बनाया था, और फिर भी इन दादियों को कभी अहंकार स्वरूप प्रत्यक्ष नहीं हुआ, और इसीलिए शायद बाबा को प्रत्यक्ष करते जा रहे हैं, और दुनिया में इतनी वृद्धि जो हुई है ये दादियों के कारण ही इतनी वृद्धि हुई है, क्योंकि उन्होंने कभी फिर भी निमित्त बनने के बाद भी मैंपन को आगे आने नहीं दिया, इसीलिए बाबा की प्रत्यक्षता को करने के लिए निमित्त बन गए। तो ये है निमित्त बनने का भाव, और इसी तरह ये दादियां भी प्रैक्टिकल कर्म के द्वारा हमें यही सिखाती रही कि निमित्त कैसे बनना होता है। बाबा मम्मा को तो साकार में शायद ही हम में से किसी ने देखा हो, लेकिन दादियों के अनुभव से जब सुनते थे कि बाबा किस तरह हर कर्म में अपने आप को पहले रखते थे, यज्ञ के कारोबार में भी, चाहे किचन के कारोबार में भी, कैसे अनाज सफाई करना होता है, कुछ भी होता था धोबी घाट पर बाबा चला जाता था, तो ये तो हम लोगों ने प्रत्यक्ष इन आंखों से नहीं देखा, लेकिन जब सुनते हैं तो लगता है कि अगर दादियां निमित्त बनकर के जिस तरह से कारोबार कर रही है तो बाबा में वो निमित्त भाव कितना जबरदस्त होगा, और इसी तरह मम्मा में भी निमित्त भाव कितना जबरदस्त था कि मम्मा का तो स्लोगन ही ये था कि हुक्म ही हुक्म चलाए रहा है, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, हुक्म ही हुक्म चलाए रहा है जैसे वो चला रहा है। जी हाँ करते हुए मम्मा हर बात में हाँ जी हाँ जी हाँ जी करते हुए नंबर वन में चली गई, निमित्त बनने के कारण ही नंबर वन में गई। तो ये निमित्त बनना हमें नंबर वन में भी ले जा सकता है, यानी फर्स्ट डिवीजन में ले जाने के लिए निमित्त बन सकता है, इतनी ऊंची प्राप्ति है तो क्यों नहीं बनना चाहिए। हर एक के अंदर विशेषता है, बाबा ने कोई ना कोई ऐसी सुंदर विशेषता हर एक को प्रदान की है, और उस विशेषता को लेकर के अगर हम चलेंगे और दूसरों को भी साथ लेकर के चलेंगे निमित्त भाव के साथ, तो देखो कितनी बड़ी प्राप्ति। फर्स्ट डिवीजन में जाने के लिए या तीनों सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए निमित्त बन जाते हैं। तीनों सर्टिफिकेट माना स्वयं स्वयं से संतुष्ट, बाबा मुझसे संतुष्ट और परिवार मुझसे संतुष्ट। तो निमित्त बनने से ये तीनों सर्टिफिकेट सहज प्राप्त हो सकता है, यही तो सबसे बड़ी प्राप्ति है निमित्त बनने की। तो ये बन करके तो अनुभव करते देखे और फिर देखे ये यज्ञ का स्वरूप कैसा हो जाएगा। इतने सारे निमित्त बन जाए तो क्या हो जाएगा, हाँ बाबा की प्रत्यक्षता को कितनी देर लगेगी, लगेगी ज्यादा देर, कभी नहीं लगेगी, बहुत जल्दी बाबा की प्रत्यक्षता हो सकती है, ठीक है ना। तो यहाँ तक ही निमित्त निर्माण और निर्मल वाणी, दो तो आउटकम है निमित्त बनने के, जो आउटकम है जो प्रत्यक्ष प्रमाण है वो निर्माणता और निर्मल वाणी, वो उसके वाणी से स्पष्ट हो जाता है कि कितना उसने अपने आप को निमित्त समझा है। अहंकार की वाणी कैसी होती है, निमित्त की वाणी कैसी होती है, वो तो आउटकम है, रिजल्ट है उस स्थिति का। तो इसीलिए मेन फोकस हमारा उस स्थिति पर होना चाहिए, और जितना स्थिति पर फोकस होगा तो वो दो ऑटोमेटिकली आउटकम के रूप में बाहर आएगा ही आएगा, स्पष्ट दिखाई देता है, ठीक है। अच्छा, ओम शांति।
उषाबेन, छोटे एक दो क्वेश्चंस आए हैं। परिवार में या खास रिश्तेदारों मित्रों में विवाह के संबंधों में हमारी भूमिका क्या होनी चाहिए?
परिवार में विवाह के समय यानी कोई भी रिश्तेदारियों में किसी का विवाह होता है तो उस समय हमारी भूमिका क्या होनी चाहिए? तो जैसे दुनिया के हिसाब से अगर कोई बहुत नजदीक का हो और कोई ऐसा हो कि जहां आपको आपकी हाजिरी जरूरी है तो हाजिरी जरूर देनी ही चाहिए, और उस समय भी अपने आप को ये समझो कि मैं निमित्त बन करके यहाँ आया हूँ, यहाँ मुझे अपनी स्थिति के द्वारा बाबा का साक्षात्कार इतनी आत्माओं को महसूस कराना है, वाइब्रेशंस के द्वारा महसूस कराना है। अपने आप कई लोग आपके जीवन को देख करके आपके पास भी आएंगे, पूछेंगे, सेवा किसी न किसी रूप से तो जरूर समाई हुई है। तो जहाँ आपका जाना अनिवार्य है और जहाँ जरूरी है वहाँ नहीं जाना ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये भी व्यवहार और परमार्थ के बीच बैलेंस का काम है। और इसीलिए बाबा ने गृहस्थ में जब आप रहते हो तो नेचुरल है कि ये बैलेंस को रखना ही जरूरी है, और बैलेंस रख करके चलेंगे तो उसमें बहुत बड़ी सेवा समाई हुई है। तो जहाँ जो चीज अनिवार्य है वो तो करना ही है, बाकी जहाँ बाबा ने आपको ट्रस्टी बनाया है तो ट्रस्टी बन करके अगर घर का ही है आपका, कुछ हिस्सा देना भी है तो जैसे बाबा कहते हैं उनका जो हिस्सा है उनको दे करके आप फ्री हो जाओ, मुक्त हो जाओ। तो इस तरह से आपको अपना रोल निभाना है, पार्ट प्ले करना है, लेकिन ये समझो कि ये भी मैं निमित्त बन करके पार्ट प्ले कर रहा हूँ। तो बाबा अपने आप बाकी का कारोबार संभाल लेगा और आपको उसके बारे में देखना नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप नहीं हाजिरी देंगे, नहीं जाएंगे, तो नेचुरल है वो बैलेंस बिगड़ गया और वहाँ फिर बाबा की सेवा के बजाय कभी कभी डिससर्विस लोग उल्टा भी उठाना शुरू करते हैं। बाकी जहाँ खाने पीने की बात आती है वहाँ तो हम अपने नियम मर्यादा में जितना रहते हैं उतना उसी में ही सेवा समाई हुई होती है। कोई आपको फोर्स नहीं करेगा, अगर आप दृढ़ है अपने संकल्प में तो कोई नहीं कर सकता है, लेकिन अगर आप कमजोर है तो जरूर है आपकी धारणाओं को तोड़ने के लिए हर कोई निमित्त बन जाएगा और वो तोड़वा के भी रहेंगे ही। इसीलिए जहाँ आपकी दृढ़ता है, आपके अंदर शक्ति है, तो कोई खाने पीने के लिए भी आपको फोर्स नहीं कर सकता है। तो आप अपना व्यवहार और परमार्थ दोनों के बीच में बैलेंस रखते हुए कर सकते हैं।
इसी से कनेक्टेड प्रश्न ये है कि अगर हम ट्रस्टी बन जाते हैं तो क्या दूसरे इससे हमको कमजोर नहीं समझेंगे?
नहीं, किस रूप में कमजोर समझेंगे? ट्रस्टी तो और ही अच्छा है कि जो जिम्मेवारी से कार्य भी करता है और एक्यूरेसी से करता है और ईमानदारी वफादारी से वो संबंध भी निभा रहा है, तो उसमें कमजोर पड़ने की तो बात ही नहीं है। ट्रस्टी माना कमजोर थोड़ी होता है। ट्रस्टी माना मालिकपना भी है, लेकिन ईमानदारी के साथ उसको व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उसको ऑर्गेनाइज करने वाला, तो जिम्मेवारी से करता है तो कमजोर नहीं होता है वो। ट्रस्टी दुनिया में भी कोई ऑर्गेनाइजेशन के ट्रस्टी ऐसे वैसे को कमजोर व्यक्ति को थोड़ी बनाते हैं। शक्तिशाली होता है, बोल्ड होता है, उसी को बनाया जाता है कि जो एक्शन ले सके, डिसीशन ले सके, एक्यूरेट चल सके, उसी को बनाया जाता है।
एक प्रश्न और है, क्या पवित्रता के मार्ग पर चलते हुए हर आत्मा को अपने प्योर कर्म को करते हुए अपने परिवार और समाज में विरोध का सामना करना पड़ता है?
हर एक को करना पड़ता है। ब्रह्मा बाबा को भी करना पड़ा तो हर एक को करना पड़ा, तो ये परीक्षा तो हर एक के सामने आएगी, क्योंकि दुनिया इम्प्योर है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि जितना आप उसमें दृढ़ रहेंगे अपनी पवित्रता की धारणा में, तो जरूर है कि आपकी विजय भी निश्चित है कि सामना तो करना ही पड़ेगा, पेपर भी आएगा, लेकिन एक बार आपने पास किया तो कोई बार बार नहीं आएगा। एक बार जम करके पास करना होगा। बहुत जैसे कोई डिफिकल्ट एग्जाम में पूरा ताकत देकर 20 नाखून का जोर लगाते हुए उसको पास करना होता है, इतनी मेहनत करनी पड़ती है, उतना सामना करने की ताकत चाहिए। और इसीलिए ये पेपर हर एक के सामने आएगा, जरूर जरूर आएगा। ये हो नहीं सकता है कि नहीं आए, हर एक के सामने आएगा और एक बार तो उसको पार करना ही पड़ता है।
एक और प्रश्न है, क्रोध को कैसे कंट्रोल किया जाए और ट्रस्टीशिप इसमें क्या रोल प्ले करता है?
ट्रस्टी माना आपने अपनी राय दे दिया, आपने अपनी जो भावना है वो प्रकट कर दी, लेकिन क्रोध तभी आता है कि जब मैंने दिया और मेरी बात क्यों नहीं मानी गई, तो वहां क्रोध आएगा। लेकिन अगर आपने दे करके डिटैच हो गए, अब आपकी जैसी मर्जी। जैसे इसीलिए मैंने दादी जी का मिसाल दिया कि दादी जी ने मेरे को कहा कि देखो दादी की भावना है कि तुम यहाँ रहो, लेकिन फिर भी तेरी जैसी इच्छा हो। अगर उस समय दादी जी के अंदर ये ट्रस्टीशिप या ये निमित्त भाव नहीं होता था, तो दादी जी ऑर्डर करती थी, अगर मैं नहीं मानती थी तो दादी जी को भी क्रोध आना स्वाभाविक होता था। लेकिन क्योंकि दादी ने ऑर्डर नहीं किया, सहज रखा कि देखो तेरी जैसी भावना, क्योंकि दादी खुद भी जानती थी कि यज्ञ में रहना माना ये बड़ा सागर है। सागर में हरेक के चलने की क्षमता नहीं होती है, सेंटर छोटा सा होता है, ये यज्ञ है बहुत बड़ा है। इसीलिए दादी ने ये बात रखी कि देखो दादी की भावना है कि तुम यहाँ रहो, लेकिन फिर भी अगर तुझे सेंटर चाहिए तो दादी भेज सकती है। तो दादी ने निमित्त होकर के अपनी बात भी रखी, क्योंकि दादी खुद भी जानती थी कि अगर सामने वाले की क्षमता नहीं है, जो क्षमता उसने शायद मेरी इतनी पहचानी नहीं थी उस वक्त, लेकिन मैं खुद तो अपनी क्षमता को जान सकती हूँ, पहचान सकती हूँ कि हाँ दादी मैं यहाँ रह सकती हूँ या नहीं रह सकती हूँ, क्योंकि कुछ समय रह करके, 2 महीना रह करके मैंने अनुभव तो कर लिया था कि भाई यहाँ हर प्रकार के संस्कार के लोग होते हैं, संपूर्ण तो यहाँ कोई नहीं है इस दुनिया के अंदर, और छोटा 5 लोगों का संगठन के बीच में रहे हैं इतना साल, और तुरंत ही आकर के 1000 लोगों के संगठन के बीच में रहना, तो नेचुरल है कि दादी फोर्स तो नहीं कर सकती थी। लेकिन दादी ने अपनी भावना बताई, अब तुम अपनी क्षमता को देखो कि तुम्हारे अंदर क्षमता है यहाँ इतने बड़े संगठन में रहने की, चलने की, साथ में मिलकर के सबके। जब मैंने अपनी क्षमता को देखा कि हाँ मैं चल सकती हूँ, तो फिर मैंने हाँ कर दिया, स्वीकार किया, दादी आपकी जो भावना है मैं उस बात को स्वीकार करती हूँ। आप समझ सकते कि जहाँ व्यक्ति की क्षमता न हो और आपने अगर ट्रस्टी बन करके उसको बात दी, लेकिन वो सामने वाले की क्षमता नहीं है और वो नहीं कर पाया, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है मैंने तो उसको आगे बढ़ाना चाहा, वो नहीं बढ़ा, मेरी नाक कटवा दी सबके सामने, तो गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? तो इसीलिए कोई बात के लिए आप खुद तो सक्षम है, और इसीलिए ट्रस्टी बनकर के दूसरों को आगे बढ़ाने के हिसाब से आप उसको आगे बढ़ाने के भाव से उसको देते भी है जिम्मेवारी, लेकिन पहले उसकी क्षमता भी तो जानो कि उसकी क्षमता है या नहीं है। क्योंकि अगर उसमें आपकी नाक कट गई तो उस समय गुस्सा भी नहीं आना चाहिए, क्रोध भी नहीं आना चाहिए। या तो उसको सक्षम बनाओ, सक्षम बनाकर फिर जिम्मेवारी दो, तो आपको गुस्सा नहीं आएगा, खुशी होगी। लेकिन बिना सक्षम बनाए आप उसको जिम्मेवारी सौंप दो और वो सक्षम नहीं है और नहीं कर पाए, फिर आप कहो मैंने तो उसको आगे बढ़ाना चाहा था ना, निमित्त बनना माना उदार उदाहरण मूर्त बन करके, उदार भावना रख करके दूसरों को आगे बढ़ाना, तो मैंने तो उसको आगे बढ़ाना चाहा लेकिन नहीं बढ़ा, तो हम क्या करें, और ही मेरी नाक कटवा दी। तो उस समय जो गुस्सा व्यक्ति को आता है बहुत अधिक आता है, तो क्रोध और ट्रस्टीशिप, तो वहां ट्रस्टी बन जाना कि चलो नहीं कर पाए कोई बात नहीं, वो नहीं कर पाए संभाल तो लो अभी उस बात को, बात को संभालना बहुत जरूरी है, वो है ट्रस्टीपन, कि गुस्सा करने के बजाय उस बात को उस वक्त संभालने की आवश्यकता है। और जो ट्रस्टी होकर के उस बात को संभाल लेता है वो महान है। ये नहीं कि भाई उसके ऊपर ब्लेम डालना तो आसान है, किसी पर भी ब्लेम डालना आसान है, तो ब्लेम डालने के बजाय ट्रस्टी माना उस समय खुद जिम्मेवार हो करके उस बात को संभाल लेता है।
एक प्रश्न ऐसा है बहन जी, कि एक्यूरेसी है हमारे पास, एक्यूरेसी होते हुए भी अपोज होगा तो राय देना बंद कर दें या उसको लेट गो कर दें?
देखो, एक्यूरेसी आपके हिसाब से है कि आपने जो किया परफेक्ट किया, लेकिन हो सकता है कि आपके प्रति एक्सपेक्टेशन उससे भी अधिक हो, एक्यूरेसी में और भी अधिक हो। तो इसीलिए सामने वाला अगर कहता है तो उस समय उस बात को समझने का प्रयत्न करें, लेट गो करने के बजाय या छोड़ देने के बजाय समझते हुए आप ये कहो कि ठीक है, आगे से हम इससे भी अच्छा जरूर करके दिखाएंगे, क्योंकि हर चीज में मार्जिन तो रहती ही है और अच्छा करने की। और इसीलिए आपकी क्षमता के हिसाब से आपने जो किया एक्यूरेट किया, ड्रामा के हिसाब से भी एक्यूरेट था, लेकिन हो सकता है कि और अच्छे से कर सकते थे, है ना? तो उस चीज को समझते हुए लेट गो करने के बजाय कि ठीक है हमारी बात को मान, लेकिन वो व्यक्ति चाहते हैं कि आप और भी इससे अच्छा करें, ये भावना है, तो उस भावना को समझे हम भी कि और भी शायद मेरे से अच्छा हो सकता था और अच्छे तरीके से कर सकते थे, दूसरा कोई तरीका और सोचना चाहिए उसको और अच्छे से कैसे करना। हर चीज में मार्जिन तो रहती ही है, तो उस चीज को समझते हुए उस चीज को देखते हुए और अच्छा करो, कोई बात नहीं।
शबन जी, इसका एक और एस्पेक्ट भी हो सकता है शायद कि मैं समझती हूँ मैं एक्यूरेट हूँ, और इसीलिए जनरली ऐसा होता है कि हमें दूसरे भी हर चीज एक्यूरेट करे, ऐसा हमारा नजरिया बन जाता है। लेकिन जितना एक्यूरेटली हम कर सकते हैं, हर कोई की ऐसी कैपेसिटी नहीं होती
नहीं है,
इसीलिए वो उस चीज को अपोज करता है, क्योंकि इतना एक्यूरेटली करना उसके बस की बात नहीं होती
है। तो उसको समझाना चाहिए, उसको दिखा सकते हैं हम, उसको समझा सकते हैं और उसको उस बात को परफेक्टली कैसे करना है सिखा भी सकते हैं, उसमें कोई हर्जा नहीं है कि वो अपोज कर रहा है। उसके बजाय उसको हम कहें कि भाई अपोज करने के बजाय देखो ये चीज ऐसे भी कर सकते हैं शायद, तो उस समय लेट गो करने का बजाय मैं तो ये समझती हूँ कि नहीं, हमारा परिवार है, संगठन है, तो ये बातें तो आती रहती है, लेकिन लेट गो करेंगे, हर बात लेट गो करते जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, फिर तो आप अपने आप को ही किनारा कर दिया, तो इसलिए ये उचित नहीं है। इसीलिए परिवार है, परिवार में ऊपर नीचे होता है, थोड़ा बहुत होता है, कोई अपोज भी करता है तो कोई बात नहीं, हम उनको समझा सकते हैं कि भाई देखो ये ऐसे कर सकते हैं, लाओ हम करके देते हैं, उसमें क्या है, अगर वो चीज उसने नहीं कर पाए आपने कर दिया थोड़ा सा तो कोई हर्जा नहीं, या उसको साथ में ले करके करें तो भी बहुत अच्छी बात है।
एक ओपिनियन पूछा है कि ऑफिस में अभी बड़ी पोस्ट है, इसके कारण जिम्मेवारी बढ़ती जा रही है, ट्रैवलिंग वगैरह भी बढ़ता है, इसके कारण नुमा शाम या अमृत वेला कभी कभी मिस हो जाता है या मुरली क्लास कभी मिस हो जाता है। छोटी जॉब लेने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन हमारे सेंटर के सीनियर्स कह रहे हैं कि जबकि आपकी योग्यता है तो आप कम जॉब या कम कैटेगरी की जॉब क्यों ले रहे हो, इससे तो और डिसर्विस होगी, तो ऐसे में क्या करना चाहिए?
नहीं, अगर आपको बड़ी जिम्मेवारी मिल रही है तो उस जिम्मेवारी को करते हुए अपनी दिनचर्या में भी हम रहे, चल मुरली तो हमें मिलती ही है, आजकल तो बाबा ने भी साइंस के साधन ऐसे दिए हैं जो मुरली हमारी मिस नहीं हो सकती, किसी भी तरीके से हो नहीं सकती, क्योंकि हर एक के हाथ में मुरली होती है। हो सकता है कि ट्रैवलिंग के कारण सेंटर पर जाना हो मुश्किल हो रहा हो, वो बात अलग है, लेकिन उसका मतलब वो तो फिर सेंटर वाले भी जानते हैं कि भाई आप इसीलिए नहीं आ पाए, लेकिन जहां आप अपने नियम मर्यादा के अंदर एक्यूरेट रहते हैं, अगर नुमा शाम का योग के समय मानो आपकी मीटिंग है तो कोई बात नहीं, बाबा को याद करके मीटिंग को आरंभ करो और पूरा समय बाबा को साथी बना करके मीटिंग करते रहो, तो उस समय बाबा साथ है ये एहसास होगा, ये फील होगा, और कभी आपसे कोई रॉन्ग डिसीजन नहीं हो सकता, तो नीचे के कम लेवल की जॉब पर आप क्यों जाना चाहते हैं? नहीं, उसी में आगे बढ़ो, क्योंकि जितना व्यक्ति आगे पोस्ट में बढ़ता है तो बाबा इसीलिए देता है वो पोस्ट कि उस लेवल के लोगों की सेवा कराना चाहता है बाबा आपसे, इसीलिए। तो ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हैं। मुझे याद आता है कि मैं जब नागार्जुना में थी और वहाँ केवी के राजू के साथ में, तो केवी के राजू को जब हमने कहा, क्योंकि कई बार वो पूछता था, क्योंकि बाबा को भी ज्ञान 60 साल में मिला, तो उसको भी एक नशा था कि मुझे भी 60 साल में ज्ञान मिला, तो अगर ब्रह्मा बाबा नंबर वन जा सकता है तो मैं भी जा सकता हूँ, ये उसको अंदर में एक फुकुर हो गया था। और इसीलिए कई बार वो आकर के पूछते थे कि अगर अभी इतनी मीटिंग्स है, इतना कारोबार है, बाबा को तो इतना कारोबार नहीं करना पड़ता था, मैं छोड़ भी नहीं सकता हूँ। तो हम कहते थे नहीं छोड़ना है, तो फिर मैं अपनी दिनचर्या कैसे करूँ? तो फिर उसको हमने बता दिया, देखो बाबा जो है, बाबा की ये दिनचर्या थी, अभी आपको कैसे सेट करना है वो आपका, आपकी दिनचर्या को देख करके आप सेट करो। उसके बाद हमने प्रैक्टिकल देखा, उसके बाद 9 बजे के बाद कोई भी पार्टीज होती थी, कोई भी मीटिंग्स होती थी, या किसी गेस्ट को बाहर ले जाना होता था, वो सारा काम उसका बेटा करता, उसके बेटे को सौंप दिया, ये बाहर ले जाना, पार्टी करना, बाहर खाना पीना, इन लोगों को घुमाना, ये सब काम तेरा, क्योंकि 9 बजे के बाद मेरा दिन समाप्त हो जाता। 9 बजे के बाद वो कमरे में चला जाता था, 10 बजे से पहले तो वो सो जाता था, 9:30 तक तो वो सो ही जाता था, क्योंकि उसको लक्ष्य रहता था मुझे 3 बजे उठना ही है। और इतना बड़ा कंपनी का सीईओ होने के बाद भी वो 3 बजे उठता था, मुरली पढ़ता था, योग करता था, अमृत वेला कभी मिस नहीं किया, मुरली कभी मिस नहीं किया, नमः शाम का योग कभी होता था नहीं होता था, क्योंकि उसी समय उनकी मीटिंग होती थी, तो कहता था बाबा को मैं साथ लेकर के मीटिंग में जाता हूँ, लेकिन 9 बजे के बाद जो इन लोगों का डिनर और पार्टी होता था उसके लिए या तो कोई मैनेजर को भेज देता था या फिर अपने बेटे को भेज देता था, वो खुद नहीं जाता था और अपनी दिनचर्या में एक्यूरेट रहता था। तो मैंने देखा कि कितना गैलप किया उसने पुरुषार्थ में, कि इतनी बड़ी पोस्ट पर होने के बाद भी इतना बाबा के प्रति प्यार और बाबा के प्रति जो लगन थी, और वो यही समझता था कि बाबा ने इसीलिए मुझे ये पोस्ट पे रखा है ताकि मैं उस लेवल के लोगों की सेवा करूं। और सचमुच उसका जब भी वो बोलता था, क्योंकि एक नागार्जुना का सीईओ बोलता है तो हर कोई उसकी बात सुनता था। तो बड़ी जिम्मेवारी, बड़ी पोस्ट अगर आपको मिलती है तो उसका मतलब ये है कि बाबा आपको निमित्त बनाना चाहता उस लेवल के लोगों की सेवा करने के लिए। तो उसको रिजेक्ट नहीं करना चाहिए कि मेरा अमृत वेला मिस होगा, और मेरा वो आपका ये है तरीका है कि कैसे आप उसको सेट करो। केवी के राजू बहुत घूमता था, विदेश भी जाता था, आज हम लोग भी कितना ट्रैवलिंग होता है, कितना जाते हैं, आना जाना कई जगह होता है, नमः शाम का योग हम लोगों का भी कभी कभी, लेकिन जब ट्रैवलिंग में होते हैं तो लक्ष्य रखते ही है कि करना ही है, अमृत वेला तो कुछ भी हालत में करना ही है, ये फिक्स हो जाता है। तो ये हमें सेट करना होता है अपनी दिनचर्या को कैसे करना। लेकिन उस पोस्ट को छोड़ दूं मैं तभी पुरुषार्थ कर सकूं, कभी नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो भगवान की चाहना है उसको आपने समझा ही नहीं, तो आपका योग क्या है? फिर नमः शाम का योग भी आप करो तो क्या फायदा, जब आपका कनेक्शन है ही नहीं, बाबा की प्रेरणा को आप समझ ही नहीं पा रहे, कैच ही नहीं कर पा रहे हो, तो फिर आप क्या योग कर रहे हैं? तो इसीलिए योग वो है कि जहाँ बाबा की जो प्रेरणा है, बाबा अगर कोई जिम्मेवारी दे रहा है, देने वाला वो व्यक्ति नहीं है, कोई इंसान नहीं है, देने वाला बाबा आपको चांस दे रहा है ताकि उस लेवल के लोगों की सेवा कर सको। इसलिए
एक प्रश्न है जो कॉमन, जो जनरली नए बाबा के बच्चे हैं, इसमें उनका है कि लोग कहते हैं ब्रह्मा कुमारी में जाते हैं तो भाई बहन बना देते हैं, लोगों को ये कैसे समझाएं कन्विंसिंग वे में ये पूछा,
आप ये कहो कि भाई हम गृहस्थ में रहते हैं, हम कौन सा भाई बहन बन करके चल रहे हैं? भाई बहन नहीं है, हम अपने नियम मर्यादा में रह करके जरूर चलते हैं, और हमने अपने जीवन के लिए एक संकल्प लिया है। जैसे रामकृष्ण परमहंस ने संकल्प लिया था, महात्मा गांधी ने संकल्प लिया था, तो संकल्प लेना कोई बुरी बात थोड़ी है। संकल्प तो लेते हैं ना, कई लोग गृहस्थ में रह करके लेते हैं। महात्मा गांधी ने संकल्प नहीं लिया था क्या? तो क्या भाई बहन बन गया था? नहीं, और भी अपने कार्य को बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो इसी तरह हमने भी एक संकल्प लिया, ये हमारी अपनी पर्सनल बात है, हमारी अपनी पर्सनल विश है, डिजायर है, इच्छा है, और उस पर्सनल इच्छा से अगर हमने लिया है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। तो भाई बहन थोड़ी बन गए, जरूरी थोड़ी है कि भाई बहन बन जाएंगे तो ही ये संकल्प ले सकते, नहीं, ये अंडरस्टैंडिंग ही गलत है। दुनिया में जितने महान आत्माएं हो गए उनकी उस बात को लोगों ने बाद में ही अप्रिशिएट किया है, पहले नहीं किया है।
यहाँ जो बैठे हैं वो मोस्टली अधर कुमार हैं, और मोस्टली सब ऐसे लोग हैं जिन्हों की युगल नहीं चलती है, मोस्टली। तो ये क्वेश्चन कॉमन है कि हम अकेले ज्ञान में चल रहे हैं, युगल नहीं चल रही है, सहयोग नहीं देती है, तो क्या करें? कभी कभी होता है हम सब छोड़ छाड़ कर मधुबन जाके बैठ जाएं।
नहीं, मधुबन जाकर के छोड़ छाड़ करके बैठ जाना ये कोई सेवा नहीं है, लेकिन आप वहीं रह करके, उनके साथ में ही रह करके, जब आप करते हैं अपना दृढ़ संकल्प लेकर के चल रहे हैं, बाबा को साथी, तो बाबा कई चीजें संभाल लेता है। लेकिन इतना भरोसा, एक बल, एक भरोसा बाबा के ऊपर हमें होना चाहिए, इतना निश्चय बुद्धि होकर के चलना चाहिए, तो बाबा कई बातें संभाल लेता है। और आपके गृहस्थ की प्रॉब्लम्स में भी जब आप देखते हैं युक्ति युक्त होकर के चलते हैं तो फिर वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन जहाँ युक्ति युक्त चलना नहीं आता है तो जरूर है 10 प्रॉब्लम खड़ी करने के लिए भी खुद कई बार निमित्त बन जाते हैं। या तो आपने मना कर दिया, कहीं साथ में ले जाना है, अरे भाई उनको घूमने जाना है तो ले जाओ, घूमने ले जाओ, उसमें अगर उसकी खुशी है, उसकी कोई बातें खुशी वाली पूरी करो, तो वो आपको सहयोग क्यों नहीं देंगे? जरूर देंगे। आप सोचो कि नहीं मैं घूमने नहीं जाऊंगा, बाबा का पैसा वेस्ट होगा, नहीं, बाबा कहते हैं जब दूसरी बातों में आपको सहयोग चाहिए, जब उनको एक अगर इच्छा है कि भाई मैं घूमने जाऊं, फलानी जगह जाऊं, यहां जाऊं, आप ले जाओ, उनको खुश करो, अगर वो उस बात में खुश रहते हैं तो जरूर है आपको सहयोग देंगे। लेकिन आप उसको कोई भी प्रकार का अगर ये खुशी नहीं दे पा रहे हैं तो फिर नेचुरल है कि आपकी धारणा के लिए तो वो प्रॉब्लम्स खड़ा करेंगे ही करेंगे। तो इसीलिए युक्ति युक्त होकर के चलना है, जहाँ कोई ऐसी खुशी है उसकी तो वो खुशी पूरी करो। कईयों को कपड़े का शौक रहता है तो दे दो, उनको दिला दो, दो दो कपड़े एक्स्ट्रा दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसी में खुश हो जाते हैं वो, है ना। कई सोचते हैं भाई मुझे फलानी जगह घूमने ले जा, कभी कोई हिल स्टेशन पर ले गए, कभी कहीं कहाँ ले गए, ले जाओ कोई बात नहीं, ले जाओ, उसमें वो खुश रहेंगे तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होंगी, क्यों प्रॉब्लम होंगी, है कि नहीं। तो इसीलिए चलना आना चाहिए, बस मेन बात ये है कि उसकी और छोटी छोटी ख्वाहिशें जो होती है उसको पूरी कर लो, तो वो शायद आपकी बड़ी ख्वाहिश के लिए कभी ऑब्जेक्शन या प्रॉब्लम खड़ा नहीं करेंगे। समझने की बात होती है, एक दूसरे को समझ करके चलो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन आप सोचेंगे नहीं, मुझे तो बाबा ने कहा है इसीलिए मैं ऐसा ही करूंगा, अभी घूमना फिरना सब बंद ये, अरे बाबा ने परसों में मुरली में भी कहा है, अगर जाना है जरूर जाओ, लेकिन कम से कम अपने नियम मर्यादा का ख्याल रखते हुए जाओ, तो क्यों नहीं, प्रॉब्लम नहीं आएंगी फिर आपके लिए। छोटी छोटी ख्वाहिशें तो पूरी कर सकते हैं, वो पूरी कर दो, वो खुश तो आप खुश, है ना। कई बार हमारे सामने भी बात आती है, वो बहनें जो ज्ञान में नहीं चलती है, जो बंधन डालती है, वो आकर के जब हम दोनों से मिलने के लिए बैठते हैं वो यही कहते हैं, हमारी छोटी छोटी ख्वाहिशें हैं कि हम घूमने जाना, इसको इस इंटरेस्ट ही नहीं, बस उसको ज्ञान योग में इंटरेस्ट। अरे भाई आप ज्ञान योग वहां करो ना, आपको ज्ञान योगी करना, आप वहाँ करो, उसको घूमने ले चलो, आप अपना कोई हिल स्टेशन पर ले जाओ उनको घूमने, उसकी इच्छा है ना पूरी हो गई बस, और क्या चाहिए। तो कई बार हम मिलने के लिए बैठते हैं, जब दोनों को लेकर के बैठते या अकेले उस बहन के साथ भी बैठते हैं, तो वो बहन यही कहती है कि भाई हमारी छोटी छोटी ख्वाहिशें होती है उसको तो पूरी करे, चलो तभी तो हम भी सहयोगी बनेंगे, लेकिन उनको तो बस दिखता दिखता है सेंटर दिखता है और कुछ दिखता ही नहीं है। तो हम क्या करें फिर, हम अपनी लाइफ में हम भी तो चाहते हैं। तो इसीलिए कभी कभी प्रॉब्लम वहाँ शुरू होती है, भाई आपको बाबा को याद करना है तो बाबा को याद कहीं भी कर सकते हैं। ये नहीं है कि आप घूमने जाएंगे तो बाबा को याद नहीं कर पाएंगे, ये आपकी कमजोरी होंगी अगर घूमने जाएं और बाबा की याद नहीं रही। लेकिन जब आप बड़ी बात उनसे मनवाना चाहते हैं तो कम से कम छोटी छोटी बातें उनकी तो मानो, उनकी भी रखो, उसमें कोई हर्जा नहीं है।
एक छोटा और क्वेश्चन है, ज्वाइंट फैमिली में अगर हम रहते हैं तो बिना बताए धन संग्रह करना चाहिए या नहीं?
बिना बताए माना
उनको ज्वाइंट फैमिली से छिपा कर, जनरली ज्वाइंट फैमिली है तो सबकी इनकम भी एक साथ जाती है, तो अगर उसे छिपा कर हमने अपने लिए थोड़ा बहुत कुछ संग्रह किया तो क्या ये उचित है?
कुछ है नहीं, लेकिन जिस दिन पता चलेगा तो सोचेंगे ये ब्रह्मा कुमारियां ऐसा सिखाती है, तो इसमें क्या होगा, सर्विस होंगी डिसर्विस होंगी। इसीलिए कहीं पर भी आप वो समय को देखो कि किसी भी तरह से अगर मालूम पड़ा और जिस दिन उनको पता चला, भले आपने थोड़े से ही अलग संग्रह करके रखे हैं लेकिन अलग रखे हैं, और जिस दिन पता चलेगा तो सबसे पहला नाम ब्रह्मा कुमारियों का आएगा। भले आप पहले भी करते थे लेकिन उस समय जो अज्ञानी होते हैं तो वहाँ तो झगड़ा ही हो जाता है, लेकिन यहाँ नाम खराब किसका होगा कि ब्रह्मा कुमारी ऐसा सिखाती है। इसीलिए मैं ऐसा कहती हूँ कि जहाँ जॉइंट में रहते हैं, एक दूसरे की बात को रिस्पेक्ट रिगार्ड देते हुए आप अगर चलेंगे और उनको कह करके बता करके करेंगे, चाहे तो आप अपना साइड में दूसरा कोई अलग बिजनेस कर लो उसके लिए जहाँ आपको चाहिए। मैं आपको एक मिसाल बताती हूँ। हमारे पास एक माता आती है बॉम्बे से, उसका बेटा उसको एक पैसा नहीं देता है, नहीं तुम ब्रह्मा कुमारियों में दे देंगी, नहीं देना है, इसलिए लिमिटेड देता है उसको, टिकट निकाल करके खुद देता है, यहाँ के लिए भी लिमिटेड पैसा उसको देता है, 100-200 रुपया वहाँ डाल देना, उससे ज्यादा नहीं देता है। अब वो माता को बड़ा अंदर में आए कि मैं सेवा करूँ, लेकिन बेटा माना देता ही नहीं है उसको, कहता है हमारी गृहस्थी भी तो चलानी है हमको, ये बहुत है तुम्हारे लिए, इसलिए उसको बहुत लिमिटेड पैसा देता है उसको। दो माताएं, उसकी एक सहेली है, अब वो सहेली जो है उसको कोई बंधन नहीं, क्योंकि उसको कोई बेटा ही नहीं तो कोई बंधन नहीं है। तो दोनों सहेलियों ने क्या किया, एक दिन बैंक में अकाउंट खुलवाने गई दोनों सहेली, तो वहाँ बैंक वाले से बात करते करते बैंक वाले ने कह दिया कि आपको ईएमआई अगर चाहिए, लोन चाहिए तो हम दे सकते हैं। अब किस बात को लेकर के, तो आजकल वो बड़े शहरों में बॉम्बे में उबर टैक्सी चलती है ना, तो कहा उबर के लिए अगर आपको चाहिए तो हम आपको लोन दे सकते हैं। दोनों माता ने लोन ले लिया, उबर टैक्सी ले लिया, एक कोई ठेकेदार को दे दिया चलाने के लिए, चला करके कहती है मेरे को हर महीने हमको 30,000 सारा कट काट के मिलता है, अब हमने बेटे को बताया नहीं 30,000 है हमारे पास, अब हम इस 30,000 से जितनी मर्जी आए सेवा करते हैं। उसको कहते हैं, वो कहते हैं आजकल तुम पैसा ही नहीं मांगती है, बेटा कहता है आजकल तुम पैसा ही नहीं मांगती, हम कहते हैं नहीं चाहिए ना, अभी कई तुम्हारी गृहस्थी भी चलानी होती है ना, तुम अपनी गृहस्थी चलाओ। दोनों माता इतनी होशियार, अभी धीरे धीरे एक टैक्सी का करते हुए जब लोन चुका करके भी हाथ में 30,000 उसको मिलता है, तो उसको देख करके उन्होंने दूसरी टैक्सी कर ली, तो 60,000 अभी रोज हर महीने आता है, कहता 60,000 हमको मिलता है, हमको जितनी भरपूर सेवा करनी है हम अपनी मर्जी से करते हैं, हमने बेटे को बताया नहीं, तो साइड में दूसरा भी कुछ कर सकते हैं अगर, लेकिन वो जो कॉमन है उसमें से आप ऐसा नहीं करो कि बेईमानी उनको लगे या कल को बाबा का नाम उसके कारण बदनाम हो। आप साइड में अपने लिए और कुछ कर सकते हैं, और इसीलिए जब करते हैं तो कोई हर्जा नहीं, क्योंकि आप अपने उसमें से कर रहे हैं, लेकिन उस कॉमन में से इस तरह से छिपा करके नहीं करो, नहीं तो बहुत मुश्किल होगा आगे चल करके। सेवा के बदले सारे रिश्तेदारियों में भी बहुत बड़ी बदनामी का कारण बन जाएंगे और आप खुद बदनाम हो जाएंगे।
एक लास्ट क्वेश्चन है उषा बहन जी, हम अपने सेंटर पर अपने अनुकूलता प्रमाण तन मन धन से सेवा करते हैं, आसपास में दूसरे सेंटर्स हैं, कभी उनको जरूरत होती है तो वो भी हमें कहते हैं कि यहाँ भी सहयोग करो, तो हमें क्या करना चाहिए?
माना आप जहाँ रोज जाते हैं, आप अगर सब जगह पैर रखने जाएंगे, कभी उधर जाएंगे कभी उधर जाएंगे कभी उधर जाएंगे, तो हर एक हक रखेंगे आपके ऊपर, लेकिन आप अगर एक ही जगह आपकी फिक्स है तो कोई आपको कहने की हिम्मत भी नहीं करेंगे, और अगर करते भी है उसके बावजूद भी, तो आप अपने निमित्त टीचर को बता करके करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और फिर भी अगर आप सोचते हैं कि नहीं मैं थोड़ा बहुत कर दूं, बिना बताए कर देंगे, तो दूसरी बार वो ज्यादा अपेक्षा भी रख सकते हैं आपके लिए। इसीलिए बेहतर होगा कि जहां एक नाव में पैर रख करके चलेंगे तो ज्यादा सुखी रहेंगे।
थैंक यू उषा बहन, आपका बहुत 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 धन्यवाद।
प्यारे भाई।